थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से मीका नबी पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने मीका के द्वारा दी गई भविष्यवाणी की बातों को देखा है कि किस प्रकार मीका इसराइल अर्थात यहूदा के लोगों को परमेश्वर के वचन बताता है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से पिताजी आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें समझाते और सिखाते हैं, हमारे दुर्बलता और निर्बलता को आप हमें दिखाते हैं, ताकि हम उन स्थानों को पहचान कर अपने आप को पहचान कर उससे बाहर आ सकें। आज जब हम आपके जीवित वचन मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है जब हमारे श्रोता भाई बहन रेडियो के निकट आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन को स्पर्श करने पाए, हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से आप उन्हें छुटकारा दें, उनके जीवन को आशीषित करें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, चाहते हैं कि वे भी अपने जीवन में चंगाई प्राप्त करें। हमारी विनती है कि न केवल उन्हें शारीरिक रीति से परंतु आत्मिक चंगाई भी प्रदान करें, ताकि हर एक जो आपके वचन को सुनता है आपको धन्य कहने पाए। आज के अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि मीका जो एक भविष्यद्वक्ता है और इसराइल की भविष्यद्वाणी करने के बाद वह यरूशलेम में यहूदा की भविष्यद्वाणी करता है। दशा यहूदा की भी अच्छी नहीं थी, वे भी पैसों के लालच में अधर्म और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। उनके अगुए प्रधान और प्रधान याजक और भविष्यद्वक्ता सब के सब भ्रष्ट थे। सब कुकर्म करने के बाद भी वे कहते थे कि यहोवा उनके साथ है और उन पर विपत्ति नहीं आ सकती, परंतु परमेश्वर का वचन मीका के द्वारा यह कहता है कि सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थानों सा हो जाएगा। मेरे प्रियो, इस कठोर बात को मीका इसराइलियों से कहता है, अब यहूदा के लोगों से भी कह रहा है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और मीका नबी की पुस्तक उसके अध्याय चार से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। अध्याय चार का विषय है अंतिम दिनों के लिए भविष्यवाणी, अंतिम दिनों के लिए भविष्यवाणी। मीका की भविष्यवाणी की तुलना यहूदियों के दिन से की जा सकती है। उनका दिन संध्या काल से आरंभ होता था। यहां पर हम देख रहे हैं कि मीका की भविष्यवाणी का आरंभ भी अंधकार से ही होता है। पहले तीन अध्याय दंड की भविष्यवाणी है, उनके पाप के लिए भावी दंड की घोषणा करने में कहता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है। दंड के अंधकार में भी एक क्षणिक प्रकाश की किरण थी। अब इस अंश में मीका भावी महिमा की भविष्यवाणी को करता है, जो हम अध्याय 4 और 5 में देखेंगे। यद्यपि इस अंश में दंड का उल्लेख किया गया है जो सूर्य के सामने आते जाते बादलों के समान है, शेष भाग महिमामय भविष्य की चर्चा है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अंत के संबंध की भविष्यवाणियां। मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप मेरे साथ निकालें यदि आपके पास बाइबल है। मीका 4 उसके 1 में, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। मेरे प्रियो, यह धर्मशास्त्र का एक अद्भुत अंश है और आपको यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 2 के तुल्य परिचित होना पड़ता है, क्योंकि यह उसके बारे में जताता है। मीका यशाया का समकालीन था। पवित्र आत्मा ने जो यशाया से लिखवाया था वही मीका से लिखवाया। 2 बार एक ही संदेश लिखवाने में उसका उद्देश्य था कि भविष्यवाणी के महत्व को समझा जाए। जब कहीं पर भी बाइबल के बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ तो विशेषता है, और यहां पर भी यही बात हमें समझाया जा रहा है। अतः हमें इस अंश पर बहुत ही ध्यान देना होगा ताकि हम इसे अच्छी रीति से समझ सकें। मेरे मित्रों, ध्यान दें कि अध्याय 4 परंतु से आरंभ होता है। शब्द यहां पर परंतु और परंतु से आरंभ होता है, जो हिंदी बाइबल में नहीं आया है। इसका अर्थ है कि अध्याय 4 अध्याय 3 के अंतिम पद से जुड़ा हुआ है, जिसमें वह यरूशलेम के विनाश की चर्चा करता है। और फिर 4 अध्याय उसके 1 पद में वह राजा नबूकदनेस्सर और रोमी तीतुस के विनाश के बाद अंतिम दिनों की ओर बढ़ जाता है। पुराने नियम में अंतिम दिन का विशेष महत्व है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 21 पद में प्रभु यीशु उस समय को भारी क्लेश कहा है। इसे हम महाक्लेश भी कहते हैं, जो अंत समय का आरंभ करेगा और इस 7 वर्षीय समय के बाद प्रभु यीशु का आगमन होगा और वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। अतः अंतिम दिनों का अर्थ है महाक्लेश का समय। जी हां, प्रभु यीशु के आगमन का समय और 1000 वर्षीय प्रभु राज का समय। अतः जब मीका अंत के दिनों का उल्लेख करता है, तब वह हर एक स्थानीय परिदृश्य के परे भविष्य में पहुंच जाता है। इसराइल में जितना अधिक अंधकार हो रहा था, उतना अधिक भविष्य ज्योतिर्मय दिखाई दे रहा था। मेरे प्रियो, हमारे साथ भी ऐसा ही है। कहा जाता है कि आप कुएं में जितना अधिक गहरे में जाएंगे, उतने सितारे आपको दिखेंगे। इसराइल पतन के गर्त में गहरा उतरा तो उसे भविष्य में ज्योति दिखाई दी। यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा है, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। यहाँ पर पर्वत शब्द यथार्थ में और रूपात्मक दोनों ही अभिप्रायों में काम में लिया गया है। दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 34 और 35 पद में नबूकदनेस्सर के स्वप्न में एक पत्थर अपने आप उठता है और उस मूर्ति को चूर चूर कर देता है। तदुपरांत वह पत्थर एक बड़ा पहाड़ का रूप ले लेता है, एक पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। यहां यह बड़ा पहाड़ प्रभु यीशु के राज्य का प्रतीक है जो वह इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। धर्मशास्त्र के अधिकार बिना हमें किसी भी बाइबल अंश को आत्मिक अर्थ नहीं देना चाहिए, परंतु यहां हमें धर्मशास्त्र का अधिकतर बात अधिकार के रूप में प्राप्त है। यह भी सच है कि यरूशलेम पहाड़ पर बसा था, प्रभु राज का केंद्र भी वही होगा, उस समय भी यरूशलेम प्रभु राज की राजधानी होगा। लिखा है, जाति जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। मेरे मित्रों, वे अपनी इच्छा से उसकी ओर आएंगे। मीका की यह भविष्यवाणी मसीह यीशु के आने पर ही पूरी होगी, यह अभी पूरी नहीं हुई है। आगे हम पढ़ते हैं मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भों में से यह भी एक संदर्भ है जिससे स्पष्ट होता है कि यहूदियों का वर्तमान स्वदेश आगमन भविष्यवाणियों की पूर्ति नहीं है। जी हां, आज न तो सब जातियां यरूशलेम आकर प्रभु का वचन सुन रही हैं और न ही प्रभु का वचन यरूशलेम से बाहर जा रहा है। मैं आपको अनेक यहूदी सेवकों का नाम दे सकता हूं जो यरूशलेम में प्रभु यीशु और वचन के प्रचार के कारण सताए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन यरूशलेम से प्रवाहित नहीं हो रहा है। मेरे मित्रों, वहां भविष्यवाणी की पूर्ति का जो मनोवेश है वह केवल अविकसित विश्वासियों के लिए है जो सोचते हैं कि अंत समय निकट ही है। उनमें से कुछ ने तो प्रभु के पुनः आगमन की तिथि भी निश्चित कर ली है। निसंदेह हम प्रभु के आगमन के समय के निकट आ रहे हैं, परंतु न प्रभु ने मुझे तिथि दी है और न ही वचन इस विषय में कुछ निश्चित समय को कहता है। काश ये भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणियों का उचित ज्ञान ग्रहण करे। मीका की भविष्यवाणी तो निश्चय ही अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज परमेश्वर का वचन यरूशलेम से बाहर नहीं जा रहा है। बाइबल सोसाइटी वहां बाइबल नहीं छपवा रही है, वहां से नया नियम निर्यात करना असंभव है। इस अंश की अद्भुत भविष्यवाणियां प्रभु राज में ही पूरी होंगी। जब प्रभु यीशु यरूशलेम में राज्य करेगा उस समय संसार के सब प्रधान, आप किसी भी देश का नाम ले सकते हैं, लंदन, वाशिंगटन, बर्लिन आदि सब यरूशलेम जाकर स्वयं प्रभु यीशु से उसके मार्ग सीखेंगे, उसके वचन को सुनेंगे और उसकी निकटता में आएंगे, क्योंकि यही भविष्यवाणी है। मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा है, वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा, इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों से हसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। मेरे प्रियो, लिखा है वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा। यह प्रभु यीशु है जो आकर इस पृथ्वी पर राज करेगा। सब देश अपने विवाद और मतभेद लेकर उसके पास आएंगे कि वह उसका निर्णय दे। इस पद में व्यक्त एक एक भविष्यवाणी की बात प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर ही पूरी होगी। आगे लिखा है वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों से हसियां बनाएंगे। यह पद संयुक्त राष्ट्र संघ की इमारत पर लिखी हुई है। सच तो यह है कि इस पद का उचित स्थान वहां नहीं है। यदि उन्होंने अपने भालों से हसियां बनाए हैं तो एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए, वे तो किसी बात पर सहमत ही नहीं है। यह तो तब ही होगा जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आएगा। लिखा है तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या भी न सीखेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा न तो अभी हुआ है और न ही प्रभु यीशु शांति के राजकुमार के आने तक होगा। अभी निहत्थे होने का समय नहीं आया है। हमें इस दुष्ट संसार में हथियार रखना आवश्यक है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 21 पद में प्रभु यीशु कहता है कि बलवंत मनुष्य हथियार लेकर अपने घर की रक्षा करता है, आप दूसरा गाल सामने रखकर अपने घर की रक्षा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु की पर्वतीय उपदेश की शिक्षा थी जो उसके राज में पूरी होगी। उसके राज में हथियार क्या, घर के द्वार में ताले की भी आवश्यकता नहीं होगी। उस समय तक मुझे एक नहीं दो ताले द्वार में लगाने अवश्य हैं। मीका की ये भविष्यवाणियां भविष्य से संबंधित हैं। हम मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है और लोग आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। मेरे मित्रों, लिखा है कि वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, कोई उनको ना डराएगा। क्या आप कह सकते हैं कि आज यह भविष्यवाणी इसराइल में पूरी हो गई है? आज तो वे अत्यधिक भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि वे भविष्यवाणी की पूर्ति में वहां नहीं हैं। आगे लिखा है सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। परमेश्वर का यही वचन है कि वे जब स्वदेश में होंगे तब शांति में रहेंगे और समृद्ध होंगे। मीका 4 अध्याय के 5 पद में आगे हम पढ़ते हैं, सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। मेरे मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि पहले मनुष्य अपने अपने देवता के पीछे चलता था परंतु भविष्य में वे सब यहोवा परमेश्वर को मानेंगे क्योंकि उसका राज्य होगा और वह सच्चाई से और न्याय के साथ इस संसार पर राज्य करेगा और उसका राज्य अद्भुत होगा। मेरे प्रियो, अभी तक यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है लेकिन बहुत ही शीघ्र यह भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। जब ऐसा समय होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर लोग किस प्रकार का आनंद और शांति प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, इस समय जब हम अपने नजरों को संसार की ओर उठा करके देखते हैं तो चारों तरफ लड़ाइयां, व्यभिचार, चोरी, हत्या और अन्य प्रकार की बुराइयां भरी हुई हैं। हम अच्छी बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम अच्छी बातों की उम्मीद भी नहीं कर पाते हैं। परंतु परमेश्वर के राज्य काल में ये सारी बातों को हम देखेंगे, अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। मेरे मित्रों, मीका नबी की पुस्तक में हम इस बात को बहुत स्पष्ट रूप में देख रहे हैं कि परमेश्वर का दास मीका, जिससे पहले इसराइल पर और तब यहूदा के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए भेजा गया, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का दास इस बात का स्पष्टीकरण दे रहा है कि उस समय लोग लालच में फंस गए थे और सब काम वे लालच में होकर धन अर्जन करने के लिए करते थे, यहां तक कि प्रधान से लेकर नीचे के कर्मी तक सब पैसे के लिए काम करते थे। भविष्यद्वक्ता भी लोगों को झूठी भविष्यवाणी करके उनसे पैसा लेते थे, उनको प्रसन्न करना चाहते थे। आज भी हम ऐसे ही परिस्थिति में हैं, आज ऐसी ही स्थिति हमारे सामने है। चारों तरफ लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मेरे मित्रों, उस समय और इस वर्तमान समय में अधिक अंतर नहीं है। मैं तो यह भी समझता हूं कि शायद कहीं उससे अधिक भ्रष्ट हम लोग हो गए हैं, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए यदि आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका काम नहीं होता है। छोटा से लेकर बड़ा तक पैसे के लिए कार्य करता है। मेरे कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हम पाप में बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे जीवन भ्रष्ट होते जा रहे हैं और हम शांति की बातें करते हैं, परंतु शांति हमें कहां से प्राप्त होगी? शांति हमें कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, शांति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि मीका कहता है कि तुम अपने अपने देवता के पीछे चलते थे, परंतु उस समय आता है, अर्थात भविष्य में वे सब परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, क्योंकि वही पृथ्वी पर राज्य करेगा। परमेश्वर का राज्य अद्भुत होगा और उस समय लोग अपने भाले को तोड़कर गलाकर उससे हंसिया बनाएंगे और यहां तक कि वे अपने तलवारों को भी तोड़कर गलाकर उससे हल जोतने के लिए हल का फाल बनाएंगे। कहने का अर्थ है कि उस समय युद्ध नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, परंतु शांति का राज्य होगा और ये शांति का राज्य केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। आज मनुष्य तरह तरह से अपने जीवन में, संसार में शांति लाने की कोशिश कर रहा है, परंतु यह सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्रियो, क्या आज आपके परिवार में शांति है? क्या आपके घर में, आपके जीवन में शांति है? नहीं, क्योंकि यह नहीं है और यही कारण है कि आप परेशान हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्या आज आप उसकी ओर फिरने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस महान शांति को पाना चाहते हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए आशीष का कारण है? मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे, हम सबसे यही कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि हम अपने आप में शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मीका नबी की पुस्तक में हम इन्हीं बातों को देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यदि आपने सच्चाई को जाना है तो निश्चय ही आप उसका नाम लेंगे और उसके नाम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो अपने अपने देवता के पीछे चलते रहेंगे। ये मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है। मेरे प्रियो, आइए इस अध्ययन के अंत में और इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को लाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु, मुझे भी वो सत्य मार्ग दिखा ताकि मैं आपके पीछे चल सकूं और आपके वचन को मान सकूं। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही मीका नबी के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आप सब की सहायता करे ताकि आप वचन में बढ़ते जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू तू।